स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी हैं, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्याला मेरा लबरेज कर, दिश नालबी को दूर कर, रूह को मेरी तू सैर कर, रूह को मेरी तू सैर कर, यीशु यीशु मसीह के नाम से मांगू दुआ मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से सुनो इसे कबूल कर, सुनो यीशु मसीह के नाम से दूर कर, रूह से मुझे भरपूर कर, रूह से मुझे भरपूर कर, मसीह के नाम से मांगू
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर इसराइल को उनके लोगों के पापों के बारे में बता रहा है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन में आशीष मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम जकरिया नबी की पुस्तक से अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए ताकि प्रत्येक जीवन आप में आशीषित हो सके। हमारी प्रार्थना है पिताजी, उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, आप उनकी भी शुद्धि लें, उनकी भी सहायता करें ताकि प्रत्येक जीवन आज के वचन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके, चंगाई को प्राप्त कर सके। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं जकरिया नबी की पुस्तक में, जकरिया ने दर्शन में देखा कि महायाजक यहोशू यहोवा के दूत देह धारण से पूर्व के प्रभु यीशु के समक्ष खड़ा था और वहां शैतान भी है। वह यहोशू पर अर्थात इसराइल पर दोष लगाता है तो परमेश्वर उसे झिड़कता है। इसराइल को बेबीलोन की सेना ने ध्वंस कर दिया था, परंतु 70 वर्ष के बाद इसराइल स्वदेश लौटा तो उन्होंने उसका पुनः निर्माण आरंभ किया। यहोशू इस समय इसराइल का महायाजक था और महायाजक परमेश्वर के समक्ष जब उपस्थित होता था तब परमेश्वर उसमें इसराइल की दशा को देखता था। यहां यहोशू मैली दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने मैला वस्त्र पहना था, अर्थात इसराइल अशुद्ध है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए जकरिया नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। मेरे प्रियो, यह निसंदेह पुराने नियम के अति सुंदर चित्रणों में से एक है। यहोशू मैले वस्त्र पहनकर धर्मी पवित्र परमेश्वर के समक्ष खड़ा होने के योग्य नहीं था। उसकी निर्बलता का भी यही प्रगटीकरण किया जा रहा है। वह मैला और दुर्गंध युक्त था, इसलिए शैतान को उस पर दोष लगाने का अवसर मिल गया। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। मेरे प्रियो, यहोशू इसराइल ही का नहीं, हमारा भी प्रतिनिधि है। उसमें हम विश्वासी के पाप देखते हैं। यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में महायाजक था। पुराने नियम में परमेश्वर महायाजक नियुक्त करता था। आज प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर के समक्ष एक याजक हैं, परंतु हम में से कुछ मैले वस्त्रों में हैं। जी हाँ, परंतु हमें मसीह की धार्मिकता पहनाई गई है। उद्धार पाने वालों के लिए यह सच ही है। यही चित्रण यहाँ प्रकट किया गया है। मैले वस्त्रों का अर्थ है पाप की मलिनता। अतः हमें सुंदर वस्त्रों की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु की धार्मिकता का प्रतीक है। यह आपके लिए है और मेरे लिए है। आपके और मेरे उद्धार का चित्रण है। अतः यह बाइबल अंश अति मनोहर अंशों में से एक है। रोमियो की पत्री में पहले 3 अध्यायों में मनुष्य परमेश्वर के समक्ष पापी दर्शाया गया है। हम सब मैले वस्त्रों में खड़े हैं। हमारी अपनी धार्मिकता मैले चित्रों के समान है। अब हम अपनी इस दुर्दशा के बारे में क्या करें? इसका उत्तर परमेश्वर देता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 21-24 पद में कहता है, परंतु अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अब प्रश्न उठता है, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरा। उसने अपना लहू बहाया कि हम अपने मैले चित्रों में उसके समक्ष आ पाएं। वह हमारी धार्मिकता के मैले चिथड़े कपड़े को स्वीकार नहीं करेगा। वह उन्हें उतार कर हमें प्रभु यीशु की धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा और प्रभु यीशु की धार्मिकता को पहनकर हम किसी भी सृजित प्राणी के दोष लगाने से बचे रहेंगे। इसीलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 31-34 पद में पौलुस लिखता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मेरे प्रियो, हमारा उद्धारकर्ता कैसा महान है। उसमें विश्वास करने पर वह हमारे पाप ही नहीं उठा लेता, वह हमारे मैले वस्त्र को भी उतरवा कर साफ कर देता है। वह हमें अपनी धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। अतः परमेश्वर के चुने हुओं पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता है। क्या परमेश्वर की संतान अब कभी पाप नहीं करेगी? अवश्य करेगी। तो फिर वह क्या करे? पहला योना की पत्री 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। परमेश्वर की सहभागिता से दूर हमें बहुत हानि होती है। हमने अपने जीवन में संपूर्ण आनंद खो दिया है। हम अपने जीवन में सामर्थ्य से वंचित हो गए हैं और हमारे विश्वास के डूब जाने की संभावना है। मेरे विचार में अनेक मसीही जन अपने जीवन में पाप के कारण उद्धार के आश्वासन से वंचित हैं। दूसरी हानि जो हम उठाते हैं वह है परमेश्वर की सेवा से वंचित होना। मेरे प्रियो, यदि यहोशू को परमेश्वर के समक्ष महायाजक के पद में खड़ा होना था तो उसके वस्त्र शुद्ध होना अनिवार्य था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर शुद्ध वस्त्र देता है। कैसे? अपनी दया से। परमेश्वर के मंदिर में दया का आसन था, आज भी हमारे लिए दया का आसन है। पहला यूहन्ना की पत्री 2:2 में लिखा है, और वही मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यह कैसी महान बात है! परमेश्वर के प्रबंध का यह एक महिमामय चित्रण है। मेरे मित्रों, आपको परमेश्वर द्वारा इसराइल को चुनने पर आपत्ति होगी। क्या परमेश्वर ने उन्हें इसलिए चुना कि वे सुंदर एवं रूपवान थे? जी नहीं। यहां मुझे रूत की घटना का स्मरण आता है, रूत की पुस्तक 2:10 का। क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? मैं होता तो रूत से कहता, घर जाकर आईना देखना, स्वयं ही जान जाओगी कि वह तुमसे क्यों प्रेम करता है और दया दिखाता है, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। मेरे प्रियो, मुझसे आप मत कहना कि मैं दर्पण में अपना चेहरा देखूं। मैं पहले ही देख चुका हूं कि मैं एक पापी मनुष्य हूं जिसे प्रभु यीशु की धार्मिकता के वस्त्रों की आवश्यकता है। क्या आज आपको भी धार्मिकता के वस्त्र की आवश्यकता है? जकर्या 3:5 में आगे हम पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। पगड़ी एक अति सुंदर प्रतीक है। महायाजक की वर्दी में पगड़ी भी थी जिस पर लिखा था, यहोवा के लिए पवित्र। यहोशू पगड़ी पहने हुए नहीं था क्योंकि मैले वस्त्रों में वह परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र नहीं था, परंतु उसे एक पगड़ी दी गई जिस पर लिखा था, यहोवा के लिए पवित्र। अब वह परमेश्वर के लिए वैसा ही काम करेगा जैसा भविष्य में इसराइल परमेश्वर के लिए होगा। मेरे प्रियो, कलिसिया के उठाए जाने के बाद इसराइल महाक्लेश के युग में परमेश्वर का गवाह ठहरेगा और प्रभु राज के 1000 वर्ष तक वह पृथ्वी पर एक याजक गण बना रहेगा। हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए जकर्या के पुस्तक 3:6-7 में पढ़ते हैं। लिखा है, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। यहोशू अशुद्ध था, परंतु परमेश्वर के उद्धार द्वारा वह परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र बना। यहोशू का उद्धार तो हो गया, परंतु परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरे काम के योग्य होना चाहता है तो तुझे शुद्ध रहना होगा, तुझे मेरे मार्गों में चलना होगा, तुझे मेरी आज्ञाओं को मानना होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर यहोशू से ही नहीं परंतु हम सब से कहता है, वह संपूर्ण इसराइल जाति से कहता है, वह आज हमसे भी कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15 में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रीति अर्थात प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कुछ विश्वासियों के विचार में अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने का अर्थ है, जैसा चाहो वैसा जीवन जियो। मेरे प्रियो, यदि आपका जीवन अपनी इच्छा का है तो आपका उद्धार अनुग्रह से नहीं है, क्योंकि उद्धारक अनुग्रह के कारण आप उसमें और उसमें और उसमें बने रहेंगे और उससे प्रेम करेंगे। वह जो आपके स्थान पर मर गया है, यदि आपने उसे ग्रहण किया है और उस पर भरोसा करते हैं तो आप उस पर निर्भर भी करेंगे। जब आप उस पर निर्भर रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, आज्ञा मानेंगे और जैसा वह चाहता है वैसा ही करेंगे। आपके लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे शाख का दर्शन। जकर्या की पुस्तक 3:8 में लिखा है, हे यहोशु महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन के हैं। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। कहता है, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। यह प्रभु यीशु का एक अति उत्तम चित्रण है। शाख धर्म शास्त्र में प्रभु यीशु की एक परिचित उपमा है। यशाया ने प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के संबंध में यह उपमा काम में ली थी। यशाया की पुस्तक 11:1 में लिखा है, तब ईशय के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यर्मिया नबी इस उपमा द्वारा पृथ्वी पर प्रभु यीशु के राजा होने की भविष्यवाणी करता है। यर्मिया की पुस्तक 23:5 में यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर अर्थात शाख उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। यहां पर हम देखते हैं, हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं। परमेश्वर यहोशू और उसके सहायक याजकों को संबोधित कर रहा है। वह कहना क्या चाहता था? लियोफोल्ड इस प्रश्न के उत्तर में 8 की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, मैं तुम्हें यहोशू और तेरे साथियों के पद से हटने नहीं दूंगा और तुम्हारी सेवा का अंत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मैंने संवारा है। तुम आने वाले मसीह का प्रतीक हो जो मेरा काम निपुणता से करेगा। वह शाख फूटकर याजक सेवा को कल्पना से परे महिमा में ले आएगा। यह उसका अनुवाद है। आगे हम पढ़ेंगे जकर्या 3:9 में लिखा हुआ है, उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर करूंगा। मेरे प्रियो, यह वही पत्थर है जिसे दानियल ने उस विशाल मूर्ति के दर्शन में देखा था। दानियल नबी की पुस्तक 2:34-35 में, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारे पृथ्वी में फैल गया। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं, लिखा है उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी है। 7 का अंक सिद्धता नहीं पूर्णता का प्रतीक है। 7 आंखों का अर्थ है कि प्रभु यीशु में बुद्धि की परिपूर्णता है। कुलुसियों की पत्री 2:3 में लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। और 1 कुरिन्थियों की पत्री 1:30 में लिखा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया गया है। लिखता है, इस देश के अधर्म को एक ही दिन में मैं दूर कर दूंगा। क्या आज ऐसा कभी हुआ है? जी नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, परंतु भविष्य में ऐसा अवश्य होगा। प्रभु यीशु आकर एक ही दिन में इसराइल का अधर्म मिटा देगा। जकर्या 3:10 में लिखा हुआ है, उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। कहता है, उसी दिन अर्थात यहोवा के दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। इसका अर्थ है कि वे उस दिन शांति और आनंद के साथ जिएंगे, एक जगह इकट्ठे किए जाएंगे। मेरे मित्रों, सिर्फ परमेश्वर है जो हमें एकत्र कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। क्या आज आप उस परमेश्वर को जानते हैं? क्या आज आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं कि आप भी शांति और आनंद को प्राप्त करें, जो एक ही दिन में आपके सारे पापों को भी क्षमा कर सकता है? मेरे मित्रों, इस अध्ययन में हम इन्हीं बातों को देख रहे हैं कि किस प्रकार इसराइल अपने पाप में है और परमेश्वर उन्हें छुटकारा देना चाहता है। वह आज आपके जीवन में भी यही कार्य करना चाहता है। यदि आज आप चाहते हैं कि आप भी अपने पापों से छुटकारा पाएं, तो निश्चय ही आप प्रभु यीशु के पास आएं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है और वह चाहता है कि आप उद्धार पाएं, आप शांति पाएं, आप आनंद पाएं। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आपके निर्णय में सहायता करे और आपको अधिकाई से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
फल रुके मुझ में पैदा करने की खुशी हिल्म पैदा कर, परहेजगारी पैदा कर, परहेजगारी पैदा कर यीशु, यीशु मसीह के नाम से।